नमस्कार। आज हम एक बहुत ही विशेष पुस्तक पर चर्चा करने जा रहे हैं
जी।
वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की पुस्तक परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी
जी।
और इसका एक खास अध्याय है नारी इस धरती का श्रेष्ठतम सार तत्व।
हाँ, बहुत गहरा शीर्षक है ये।
बिल्कुल, तो आज हम इसी अध्याय में जो विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे।
जरूर,
तो चलिए शुरू करते हैं। वंदनीय माताजी नारी को धरती का श्रेष्ठतम सार तत्व क्यों कह रही हैं? ये पुस्तक पुरुष की संघर्ष क्षमता और नारी की सृजन क्षमता में एक दिलचस्प अंतर बताती है
जी,
है ना?
हाँ बिल्कुल। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि देखिए, वंदनीय माताजी मानती हैं कि पुरुष में संघर्ष करने की क्षमता ज्यादा हो सकती है शायद।
हाँ,
पर सृजन की जो प्रतिभा है, जो क्या कहते हैं, एक विशिष्टता प्रकृति ने नारी को दी है, वो तो अतुलनीय है।
अतुलनीय
जी।
अध्याय में तो नारी को सिर्फ सृजनशील नहीं कहा गया बल्कि सृजन की मूर्तिमान अधिष्ठात्री कहा है। मूर्तिमान अधिष्ठात्री,
हाँ,
मतलब पृथ्वी से भी महान बताया गया है क्योंकि वो अपनी काया से मनुष्य को जन्म देती है और मनुष्य को तो सृष्टि का मुकुटमणि माना गया है।
ये तो बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया गया है नारी को, खासकर पुरुष की भूमिका के सामने रखकर देखें तो।
और जैसा आपने कहा, बात सिर्फ जन्म देने की नहीं है, पोषण का भी जिक्र है इसमें।
हाँ हाँ, पोषण और भरण,
ये पहलू भी उतना ही जरूरी है।
अध्याय साफ कहता है कि शिशु के लिए जो अमृत समान आहार है,
माँ का दूध,
बिल्कुल, वो माँ के वक्षस्थल से ही मिलता है। और फिर नवजात शिशु का जीवन, वो तो पूरी तरह से माँ के निरंतर देखभाल पर ही टिका होता है,
जिसे अहर्निशी परिचर्या कहा गया है।
हाँ,
दिन रात की सेवा।
सही पकड़ा, दिन रात की सेवा।
वंदनीय माता जी बहुत स्पष्ट रूप से कहती हैं कि इन अनुदानों के बिना तो मनुष्य का जीवन संभव ही नहीं था।
और पुरुष में ये क्षमताएं नहीं है।
जी, पुरुष इन दिव्य विशिष्टताओं में असमर्थ है, ऐसा अध्याय कहता है। तो ये सृजन और पोषण की क्षमता, ये नारी की श्रेष्ठता का एक कह सकते हैं मुख्य आधार हुई। पर एक और बात भी है इसमें
जी।
जैसे पुरुष को अधिकार, उपभोग, वर्चस्व, इन चीजों से शायद श्रेय मिलता है।
हाँ, समाज में अक्सर ऐसा देखा जाता है,
पर नारी के गुणों को बिल्कुल अलग तरह से बताया गया है।
बिल्कुल सही। अगर हम इसे वंदनीय माता जी के मतलब पूरे नजरिए से देखें तो ये अध्याय नारी में करुणा, सहनशीलता, क्षमा, सेवा, समर्पण, इन गुणों की प्रचुरता पर बहुत जोर देता है।
अच्छा,
उनका तर्क ये है कि इन्हीं गुणों के कारण वो बालक से लेकर बूढ़े तक सबके लिए वंदनीय बन जाती है, कल्याणकारी होती है।
एक तरह से जैसे
एक जीती जागती सरसता।
हाँ।
एक कल्प वृक्ष की तरह बताया है जिसकी छाया में हर कोई आता है और अपने अपने हिसाब से अपने स्तर का वरदान पाता है, शांति, पोषण, सब कुछ।
तो इसका मतलब ये हुआ कि वंदनीय माता जी के अनुसार ये गुण सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये समाज के लिए, सृष्टि के लिए बहुत जरूरी है।
निश्चित रूप से। असल में इस अध्याय का जो केंद्रीय विचार है वो यही लगता है कि नारी की श्रेष्ठता सिर्फ शारीरिक या जैविक नहीं है, बल्कि वो आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर भी है। उसकी ये जो क्षमता है सृजन की, पोषण की, सेवा की, ये उसे प्रकृति का सबसे करुणा में सबसे शक्तिशाली रूप बनाती है।
और ये पुरुष के संघर्ष वाले स्वभाव से काफी अलग है।
हाँ, ये दृष्टिकोण पुरुष के स्वभाव से मौलिक रूप से अलग प्रस्तुत किया गया है। नारी को यहाँ सुषमा, कला, आशा, अरे यहाँ तक कि स्वयं जीवन का प्रतीक माना गया है।
तो अगर हम संक्षेप में कहें इस अध्याय के हिसाब से,
हाँ,
नारी की श्रेष्ठता उसकी अनोखी सृजन शक्ति में है।
हाँ।
पोषण करने की अद्भुत क्षमता में है।
बिल्कुल।
और साथ ही करुणा, सेवा, समर्पण जैसे उसके स्वाभाविक गुणों में है और इन्हीं वजहों से वो इस संसार का श्रेष्ठतम सार तत्व है।
एकदम सही, यही सार है। और ये चर्चा देखिए एक अहम सवाल भी छोड़ जाती है हमारे लिए।
क्या सवाल?
कि वंदनीय माता जी ने नारी के जिन गुणों की बात की है
जी,
जिस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है
जी,
आज के समय में ये जो बदलता हुआ समाज है, सांस्कृतिक माहौल है, इसमें उनका क्या महत्व है,
ठीक,
क्या प्रासंगिकता है?
हाँ, ये सोचने वाली बात है
जी, इस पर जरूर विचार करना चाहिए।